ti. हम सभी पद्मा पदम भाग्यशाली बाबा के बच्चे मधुबन तपोभूमि में जहां कहते हैं जीवन में अगर सच्चा सुख आनंद और गुणों को भरना है तो मधुबन वो भूमि है जहां स्वतः प्राप्तियों से अपनी झोली भर जाती है। भक्ति में भी मधुबन का बहुत गायन है। अच्छे अच्छे भक्त जो बहुत भक्ति करते हैं वो कई बार भाव विभोर होकर के कहते हैं मधुबन में अगर बांसुरी या मुरली सुननी हो तो वो मधुबन में बजती है, अगर जीवन में रस भरना हो तो वो मधुबन में भरता है। तो आज आप भी उसी मधुबन भूमि पर पहुंचे हुए हैं जहां रस जीवन में आ जाता है। इस भूमि का अपना ही महत्व है, ये कोई साधारण स्थान नहीं है। जैसे लोग तीर्थों पर जाते हैं ये उनमें से नहीं है, ये तो महातीर्थ है, ये तो पुण्य की भूमि है। यहां तो हमारे अंदर स्वतः स्थान का जो महत्व है आने से ही अपने अंदर झोली भर जाती है। सोच करके देखो, दुनिया कहा करती है कि अगर कोई एक ऋषि की संगत मिल जाए तो जीवन तर जाता है। ये तो है ही ऋषियों की भूमि, जहां से आप गुजरते हैं हर पल कोई न कोई बड़ा, कभी कोई हमारे सीनियर भाई, कभी सीनियर बहने, कहीं से दादियां गुजर रही हैं जिन्होंने अनेकों अनेक वर्ष तपस्या की है। आप अनुभव में सुनेंगे किसी ने 40 वर्षों से, किसी ने 50 वर्षों से, कोई 60 वर्षों से तपस्या कर रहा है और उनके आसपास से हम गुजरते हैं, उनके द्वारा प्रभु महावाक्य अनुभव के रूप में सुनते हैं, तो क्या ये भाग्य की निशानी नहीं? वो कहते हैं एक ऋषि हमारे जीवन में उनकी दृष्टि पड़ जाए, संतों की दृष्टि पड़ जाए, सच्चे संत यहां बैठे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगी ये तो दादियों की तपोभूमि, जहां एक एक ब्राह्मण भाई बहनों पर उन्होंने मेहनत की है, अपने ऊपर तो की लेकिन एक एक भाई बहनों पर, उनको गुणों से भरपूर करने के लिए, शक्तियों से भरपूर करने के लिए सारा दिन मेहनत की है। तो इस भूमि का तो महत्व ही कुछ और है। अब बात आती कि जब ये इतनी महान भूमि है, पुण्य की भूमि है, तो क्या मैंने अपने जीवन में ये लक्ष्य बनाया है कि मैं इस भूमि से अपने में क्या भर कर जाऊंगा? मुख्य बात वही है, हम यहां आए हैं, हमने अपने आप को कितना भरा है। कई बार लोग कहा करते हैं कि गंगा के किनारे पर रहने वाले खाली रह जाते हैं, तो आप इस तट पर आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तट पर आकर भी मैंने कुछ ना पाया। ऐसा न हो जाए, तट पर आए, मुश्किलों से निकल निकल कर आए, धंधे पानी को छोड़ कर आए, माताएं परिवारों से मुश्किल से निकल कर आई और यहाँ आकर, अगर यहाँ आकर मेरा ध्यान और बातों में जाता, अगर यहाँ आकर हम तेरी मेरी पुरानी दुनिया की आसुरी बातों में ही मन बुद्धि को व्यस्त कर देते, तो जो समय मिला साधना के लिए, जो समय लेके आए पुण्य की पूंजी को कमाने के लिए, जो समय भाग्य की रेखा को खींचने के लिए लाए थे, वो समय हाथ से निकल गया तो मेरे हाथ क्या आएगा। इसलिए आवश्यकता है हम जो यहाँ पर दो तीन दिन हैं, और उसमें भी कल विशेष बाबा का आह्वान का दिन है, तो हमारा मन बुद्धि जितना शांत होगा, एक की लगन में मगन होगा, बाबा बाबा अंदर में चिंतन सिमरन में होगा, तो हम जाकर के अपने अंदर ऊर्जा को भी भर सकेंगे, खुशी को भर सकेंगे, अनुभव भी कर सकेंगे। अन्यथा आप अपने सेवा स्थान पर भी जाते हैं, यहाँ भी आए हैं, उसमें और इसमें यही फर्क है, यहाँ बहुत सी झोली जो वहां नहीं कर पाते ले पाते, यहाँ लेने के लिए आए। मुरली तो हम सुनते हैं, लेकिन सारा दिन हम और बातों में बिजी होने के कारण जो बाबा से मिलना चाहिए वो वहां नहीं ले पाते, या सारा दिन ना बाबा के घर में हो, खाते हो तो क्या खाते हो, ब्रह्मा भोजन। सोचिए, सारा दिन क्लास से उठे गए, भोजन किया, रेस्ट किया, फिर आए क्लास की, फिर कहाँ जाएंगे, भोजन पर। तो सारा दिन या तो आपको आत्मा की खुराक मिल रही है, ज्ञान का भोजन, फिर यहाँ से उठकर जाते हैं तो वो ब्रह्मा भोजन मिलता है, तन मन दोनों ही तंदुरुस्त। पर अगर मेरे अंदर कहीं लीकेज होगा तो जो पाना चाहिए वो नहीं पा पाएंगे। कई बार कई परिवार के लोग कहते हैं, बच्चा दिखने में अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन इसका डाइजेशन बहुत वीक है, कुछ भी खाता है तो इसको हजम नहीं होता है, कभी इसके अंदर से उल्टी हो जाती है, कभी कुछ इसको होता रहता है। तो आप उसको तंदुरुस्त मानते हैं? क्या कहते हैं, आपको कोई आकर ये सुनाए तो आप क्या कहेंगे, भाई डॉक्टर को दिखाओ, इसको दवा की जरूरत है, इसका हाजमा ठीक नहीं है, भोजन किया लेकिन इसको भोजन की अगर शक्ति नहीं मिल रही है तो ये अंदर से तो कमजोर होता जाता है, इसको डॉक्टर को अवश्य दिखाओ, कहेंगे या नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से हम बाबा के घर में बैठे हैं, हमें ये सौभाग्य मिला कि हम बाबा के घर में पहुंचे। बहुत से ऐसे आज के दिन भी भाई बहने होंगे जो चाहते होंगे हम मधुबन में जाएं, लेकिन बहने कह देती हैं कि भाई नंबर इतना ही मिला है, हम इतनी छुट्टी नहीं दे पाएंगे। और आप उन भाग्यशालियों में से हो जिन्हें छुट्टी मिली और बाबा के घर आए। तो छुट्टी मिली ना, हो सकता है आपको भी बहन जी को रिक्वेस्ट करना पड़ा हो, बहन जी इस बार तो भेजो, बहन जी अभी तक तो हम मिले भी नहीं है, गए भी नहीं है। आप इतना रिक्वेस्ट करके आए और यहाँ आकर मैंने अपने ऊपर अटेंशन नहीं दिया। जो साधना ज्ञान और योग की करनी चाहिए वो नहीं की तो प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए मधुबन की एक बहुत बड़ी विशेषता है, शायद आपको पता भी हो, और वो ये है, एक करो सौ पाओ। एक करो कितना पाओ? सौ पाओ। थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं प्राप्ति बहुत अधिक होती है। क्यों? क्योंकि कहा ये तपोभूमि है, स्वतः वरदान मिलते हैं, चारों तरफ जहां से भी गुजरते हैं ऑटोमेटिक वो वाइब्रेशंस बने हुए हैं। तो योग लगाना नहीं पड़ता, थोड़ा सा करो योग लग जाता है। सबका अनुभव ये है लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी मैं ना करूं, यहाँ आए हुए और मैं सोचूं देखो मैं तो बड़ी मुश्किल से निकल कर आया हूँ, निकल के आई हूँ, परिवार वालों ने कहा था, पोते पोतियों ने कहा था हमारे लिए कुछ तो लेकर के आना, अरे थोड़ा सा तो बाजार जाऊं पोते के लिए खिलौना लेकर के आऊं और अपने बहू बेटों के लिए किसी के लिए कुछ तो लेके चलूं, नहीं तो वो कहेंगे कुछ भी नहीं लाए। यहाँ पर भी अपने अंदर किसकी याद बसाई हुई है तो आप कैसे बनेंगे? यहाँ पर भी भले आप अकेले आए हो लेकिन आप विचरण तो पोते पोती बहू बेटों के बीच ही कर रहे हो मन बुद्धि से, तो बाबा की याद तो बनेगी नहीं। बाबा की याद रहेगी नहीं, क्यों? क्योंकि याद तो किसकी अंदर में है? पोते और पोतियों की। वही लौकिक संबंध, वही मोह मुझे खींच रहा है तो कभी मैं उसमें सारी शक्ति लीकेज कर रहा हूँ, कभी व्यर्थ में आपस में तेरी मेरी में लगा हुआ हूँ, कभी शरीर की ही बातों में, अरे इतना चलना पड़ रहा है, मेरे को तो स्थान यहाँ मिला स्थान वहाँ मिला, अब मैं कैसे करूँ क्या करूँ, अगर इन्हीं बातों में लगे रहे तो। मुझे याद आता है बाबा भी कहा करते थे, बड़ी दीदी कहा करती थी कि आप जितना दूर से जाते हो एक एक कदम में पदम है, यहाँ तो आप हो ही बाबा के घर में, हो ही बाबा के घर में। तो बाबा की याद में हम चलते हैं, बाबा की याद में खाते हैं, बाबा का गुण गान करते हैं, तो देखो चेहरों के नूर ही बदल जाएंगे। क्योंकि एक बात सोचो, हम यहाँ आए हैं किस लिए आए? हम यहाँ आए ही इसलिए हैं कि मेरे भाग्य की रेखा अपना भाग्य बनाने के लिए, इसको लंबा करने के लिए। दूसरी बात, हम यहाँ आए हैं अपनी झोली वरदानों से भरने के लिए, ये वरदान भूमि है ना। इसलिए भक्ति में भी बहुत से प्रसंग ऐसे सुनाते हैं कि किसी ने वरदान मांगा, प्रभु प्रसन्न हो गए उनकी भक्ति से और प्रभु ने वरदान दे दिया, लेकिन साथ साथ प्रभु ने कहा देखो जो मैंने वरदान दिया ना, इसका मिसयूज नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना। अगर इसका दुरुपयोग करोगे तो वरदान समाप्त हो जाएगा। तो मधुवन वरदान भूमि है, लेकिन अगर मेरी मन बुद्धि ज्ञान के अलावा और बातों में रहेगी तो वरदान या शक्ति काम करेगी नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो सदुपयोग नहीं हुआ। वरदान कैसे मिलते हैं? जब हम अपने अंदर साइलेंस में अंतर्मुखी होकर ज्ञान का सिमरन करते हैं, अपने अंदर जाते हैं, अपने अंदर में अपने से बात करते हैं, बाप की याद में, बाबा की याद में रहकर अपने को शक्तिशाली बनाते हैं, तो वरदान काम करता है। एक बार एक व्यक्ति जिसको कहेंगे राजा और राजा का मित्र था, राजा और उसका खास दोस्त मित्र, वो राजा से बहुत स्नेह करता था, राजा भी उससे बहुत प्यार रखते थे। तो उसने एक दिन कहा राजन से, राजन मेरे मन में एक प्रश्न आता है, क्या वो मैं पूछ सकता हूँ आपसे? बोला पूछो। तो उस व्यक्ति ने, मित्र ने राजन से कहा, राजन ऐसे तो मैं आपके बहुत करीब हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे अपनी प्राण रक्षा क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई मैं आपसे बात पूछूं वो आपके दिल को ठेस पहुँचा दे और आपको मेरे प्रति आवेश आ जाए, तो पहले आप मुझे जीवन प्राण, जो मेरे प्राण हैं, उनको क्षमा करें, तो फिर मैं अपनी बात रखूं। तो राजन ने कहा, अरे आज तक तो तुमने मुझसे कभी ऐसी बात नहीं की, तुम तो मेरे साथ हंसते बोलते हो, आज ये क्या मन में तुम्हारे संशय है? जाओ, तुम मेरे मित्र हो, मैं कोई भी बात को ऐसा नहीं सोचूंगा, चाहे तुम कुछ भी पूछो, मैं कुछ भी गलत नहीं मानूंगा, तुम पूछो, मैंने तुम्हें क्षमा किया। तो उसने पूछा, राजन एक बात बताओ, तुम राजा बने और मैं प्रजा में हूं, क्यों? तुम राजा बने हो और मैं एक प्रजा का, या मैं एक नागरिक हूँ, प्रजाजन हूँ, पर वो एक अलग बात है कि मेरी किस्मत, जो आप मुझसे स्नेह रखते हैं और मैं आपके करीब आ पहुंचा, पर मैं राजा क्यों नहीं बना? मैं भी राजा बनना चाहता हूँ, मेरे मन में ये बात है, मैं राजा नहीं बना। तो राजा मुस्कुरा दिए, बोले ये तो मुझे भी नहीं पता कि मैं राजा क्यों बना और तुम क्यों नहीं बने, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, पर फिर भी मैं एक बात जरूर तुमसे कहूंगा, शायद वो तुम्हें तुम्हारे उत्तर में मदद दे सके। बोला जरूर राजन, आप बताओ, आप राजन कैसे बने, मैं क्यों नहीं बना? हम भी यहाँ लक्ष्य लेकर आए हैं, बाबा के बने हैं, मनुष्य से देवता बनने के लिए आए हैं, और ये वो भूमि है जहाँ से अमिट छाप पड़ती है, जहां से बाबा की दृष्टि हम पर पड़ती और वरदान मिल जाते हैं, वही बात उसने पूछी थी कि मैं राजन क्यों न बना। तो उसने कहा, देखो मैं एक बात सोच रहा हूं कि मैं अपने प्रभु को सवेरे सवेरे उठकर राजी करता हूं, सुबह सुबह उठता हूं, मेरे प्रभु को राजी करता हूं, खूब मनाता हूं, खूब प्यार करता हूं, कहता हूं आओ मेरे प्रभु, आप ही तो मेरे हो, आओ चलो आपस में मिल लेते हैं, आपका हाथ मेरे ऊपर रख दो, आपका स्पर्श मुझे आपके करीब ले आएगा, क्योंकि आप जिसका हाथ पकड़ते हैं वो आपके करीब होता है ना। आप किसी का हाथ पकड़ के चलो और कोई अगर आपके सर पे हाथ रखेगा तो कितना करीब होगा, तब तो रख पाएगा ना। तो आप मुझे अपना हाथ दे दो, अपना हाथ मेरे ऊपर रख दो, ये स्पर्श जरूर मुझे दे दो। मैं सुबह सुबह भगवान को बहुत रिझाता हूँ, प्रेम से बातें करता हूँ और उसका भरपूर आनंद मैं लेता हूँ। तो अपने आप से पूछो, क्या मैं अपने अंदर ये आनंद सवेरे सवेरे इस मधुबन भूमि में लेता हूँ? वो तो एक अज्ञानी भक्त की कहानी है। हम यहाँ सचमुच डायरेक्ट भगवान की भूमि पर आए हुए हैं, जहाँ स्वयं भगवान का अवतरण कहो, स्वयं तपो भूमि कहो, जहाँ भगवान आते हैं और ब्राह्मण हमें बनाकर तपस्या कराते हैं। ये तपो भूमि है जहाँ ब्रह्मा बाप ने भी तपस्या की है, तो मैं उसका आनंद लेता हूँ, फायदा लेता हूँ, क्योंकि कहा एक का 100 गुना मिलता है। मैं तपस्या कर बाबा का हाथ कहो, बाबा का साथ कहो, सुबह सुबह भरपूर महसूस करता, और जब ये अपने अंदर हम शक्ति सवेरे सवेरे भर लेते हैं तो स्वतः सारा दिन हमारा खुशी से बीतता है, क्योंकि जिसकी झोली सवेरे सवेरे भर गई, अपने अपने लौकिक घर में तो हो सकता है आप उठते हो या ना उठते हो, उठते भी होंगे तो अकेले अकेले, कभी चारपाई पे, कभी इधर उधर थोड़ा सा योग किया। यहाँ तो सवेरे सवेरे इतने ब्राह्मण उठते, एक वातावरण लहर, ऑटोमेटिक ना उठने वाले की भी आंख खुल जाती है। बहुत से बाहर वाले जब आते हैं, जब बाहर वालों का कार्यक्रम चलता है, वो भी आकर सुनाते हैं, बहन जी या तो आंख खुल जाती है। हम तो कभी जिंदगी में 7 बजे से पहले उठे नहीं, लेकिन या तो 3 बजे आंख खुल जाती है। क्यों? क्योंकि सवेरे से ही एक याद का वातावरण बन जाता है, गीत बजता है, बाबा अपने बच्चों को शहजादों की तरह उठाता है, गीत बजता है। घर में तो वो भी नहीं होता, होता है, यहाँ स्वतः गीत बजता है, आप उठते हैं, उठ करके बाबा के लिए भाग के थोड़ा सा फ्रेश तैयार होकर के आते हैं, आकर बाबा के सामने बैठ जाओ। स्वते अगर आप प्यार से आकर बैठते हैं तो हो नहीं सकता बाबा वो प्यार की रस्सी कहो खींचे नहीं, या दृष्टि आपको मिले नहीं, या वो प्यार की अनुभूति ना हो, या वो भरपूरता की अनुभूति ना हो, हो ही नहीं सकता। लेकिन पात्र तो तैयार हो, पात्र ही तैयार नहीं। कई बार हम बाबा के आगे यहाँ हॉल में आकर तो बैठते हैं, लेकिन मेरी आंखें बंद हैं, बस बार बार मैं यूं झुटके ही मारूंगा तो अनुभव कैसे होगा? फिर हमारे मीठे मीठे भोले भाले भाई बहने कहते हैं, हाँ आज योग बहुत अच्छा लगा, शांति की अनुभूति हुई। अरे क्या शांति की अनुभूति हुई? नींद में तो शांति दिखाई देगी, लेकिन अलर्ट होकर के हम बैठे और उस रस को अपने अंदर भरें, तो आपको लगेगा सचमुच ये चार दिन, दो दिन मेरे लिए सचमुच एक वर्ष का शक्ति तैयार कर रहा है। फिर मैं जब आऊंगा उसके लिए, ये अभी से मेरी चार्जिंग तब तक के लिए हो रही है। जैसे मोबाइल खरीदते हो ना, तो आजकल हमारे भाई बहने क्या करते हैं, भाई बैटरी लंबा समय चलनी चाहिए। ऐसे ही मेरी चार्जिंग, ये शक्ति मेरे अंदर लंबे समय तक काम करे, उसके लिए अलर्ट होकर ये दो दिन बिताओ। अलर्ट होकर फिर उस भक्त ने दोबारा राजन से पूछा, राजन कोई और भी बात बोलो। बोला, एक बात तो मैंने तुमको बता दी, चलो अनुभव की दूसरी बात। तुम मेरे खास मित्र हो तो बता देता हूं, शायद वो भी तुम्हें मदद करे। और वो ये है, मैंने बहुत सुना है कि संघ का असर आता है, तो मैं कोशिश करता हूं, चाहे मैं दरबार में आऊं, चाहे कहीं भी रहूं, चाहे मैं शिकार पर जाऊं, मेरी सेना सैनिक मेरे साथ कितने भी हों, लेकिन मेरा प्रभु मेरे साथ जरूर हो। वो मैं कोशिश करता हूं दरबार में भी मेरा वो साथ हो, इसलिए मैंने अपने दरबार में भी मेरे चारों तरफ मेरे प्रभु को कहीं न कहीं उसको लगा रखा है, ताकि जिधर देखूं दरबार में कोई ऐसी समस्या भी आए, कोई बात भी आए, तो मैं अपनी दृष्टि अपने प्रभु की ओर ही ले जाता हूं, तुम आ जाओ। तो ये साधारण कलयुगी राजाओं की कहानी भी ऐसी बातें करती कि वो भगवान को साथ रखते और जब भी कोई फैसला लेते तो उसका आह्वान करते, हम तो हैं ही सच्चे ब्राह्मण। बामन तो सदैव कहते, मुझे अपना साथी बना लो। मुझे याद आता दादा विश्व रतन का आपने नाम सुना होगा, या बहुतों ने दादा को देखा भी होगा। बहुत बार वो अपना अनुभव सुनाया करते थे कि मैं अपने राइट साइड हमेशा महसूस करता हूं बाबा मेरे साथ खड़े हैं, मेरे साथ बैठे हैं। मैं चलता हूं तो बाबा के हाथ में हाथ पकड़ कर चलता हूं, ऐसा महसूस करके चलता हूं। अकेले नहीं चलता हूं, हमेशा कहा करते थे जब भी आते थे कारणे अकारणे, उनका साल में एक बार आना हमारे पास होता था, तो वो हमेशा कहा करते थे, बहनों ये सबसे सहज पुरुषार्थ है प्राप्ति का। हमेशा अपने अंग संग राइट साइड, बाबा हमें दादा हमेशा कहा करते थे लेफ्ट साइड नहीं, बाबा को राइट साइड में रखो और ऐसा महसूस करो कि वो मेरे साथ है। तो यहां तो आप इस अनुभव को सहज पुरुषार्थ में ले सकते हैं कि बाबा मेरे साथ है, तो मन भी व्यर्थ से बचा रहेगा, क्योंकि भाई ये निश्चित है जिस संघ में हम रहते हैं उस संघ की बातें होती। अगर आपका साथी व्यापारी साथ होगा तो आप कौन सी बातें करोगे? व्यापार की ना। अगर आपके साथ आपका डॉक्टर मित्र साथ है तो कौन सी बात करोगे? समझ गए ना, आप किसके साथ हो। अगर आपकी दोस्त सहेली साथ होगी तो आप इधर उधर की बातें करोगे, आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, इसने ये किया, इसने वो किया, करेंगे ना। तो बाबा ने तो हमें बहुत सहज दे दिया है करके कि हर संबंध बाबा से निभाओ, बाप के रूप में देखो, दोस्त के रूप में देखो, मुरली चलती है तो शिक्षक के रूप में देखो, हर रूप में देखो और साथ निभाते आगे बढ़ो, सारा दिन उसको साथी बनाओ। और ये बहुत अच्छा संबंध है साथी का, जिससे हर बात सहज करके कर सकते हैं। मन में कोई भी बात हो, दुविधा हो, कोई भी बात हो, और तब कहा यहाँ ये अभ्यास सहज रूप में हो सकता है। ये तपोभूमि, कर्म भूमि, आप जहां से निकलेंगे सब आपको बार बार याद दिलाते हैं, अरे बाबा के कमरे में चलते हैं, अरे बाबा के घर में, वहां हॉल में चलते हैं, क्लास चल रही होगी, कोई बोलेगा अरे बाबा के घर में हो, शांति से बैठो। तो याद बार बार किसकी आ रही है? बाबा की, बाबा की आ रही है। तो हम उस साथ को साथ लें और साथ निभाएं। लेकिन मुख्य बात है पहले अपने अंदर शांत रहो। अगर सारा दिन ही मैं बाह्य मुक्ता में हूं तो साथ को अनुभव ही नहीं कर सकते, अनुभव ही नहीं कर सकते। मुझे याद आता है जब हम छोटे थे, हमारे यज्ञ में भूरी दादी हुआ करती थी, जो स्टेशन पर भाई बहनों को रिसीव किया करती थी। और जब स्टेशन पर वो भूरी दादी आती थी रिसीव करने, सबसे पहले आकर पार्टी के आगे आकर खड़े होकर ओम शांति करके पहले बात ये कहा करती थी कि देखो ऊपर योग पट्टी चल रही है, शांति का वातावरण है, सब मौन में है, चारों तरफ शांति है, आप भी अब जाएंगे, क्योंकि पहले तो बसेस में जाते थे। ये सब सुविधाएं आजकल बहुत हुई हैं, उस समय तो कोई सुविधा नहीं थी, बस बसेस में जाते थे तो ऊपर जाते थे तो बहुत से भाई बहने तो बहुत उल्टियां करते थे, लेकिन वो कहती थी बार बार कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ भी हो लेकिन अंदर में शांत रहना, मौन में रहना। आपसे दीदी दादी मिलेंगे तब आपके चेहरे पर वो शांति नहीं होगी तो क्या कहेंगे, वहां तो शांति है, आप अपने को सबसे अलग महसूस करोगे, इसलिए शांति में रहना। अभी से फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करो। तो भाई बहने भी बस में ही बैठते ही एकदम शांत हो जाते थे, बाबा की याद शुरू हो जाती थी। पहले तो बहुत बार गवर्नमेंट की बसेस में ऊपर जाना होता था, अपनी साधन सुविधाएं तो बहुत बाद में इतने तैयार हुए हैं। और भाई बहने मधुबन में पहुंचकर एकदम ऐसे बात करते थे जैसे साइलेंस में मौन होता है ना, तो जरूरी बात कैसे करते हैं, एकदम शांति से, धीरे से। बूढ़ी दादी उसी समय पक्का करा देती थी आपको 3 दिन 4 दिन बिल्कुल शांति में रहना, कोई जरूरी बात है तो करना, कोई आवाज नहीं। अभी तो हम देखते हैं भाई बहने कितना जोर जोर से बोलते हुए जाते हैं। वही बातें घरों की यहां करेंगे, शायद वहां टाइम नहीं मिलता, यहां सोचते हैं 4 दिन मिले हैं तो कोटा पूरा कर लो, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। अब तो वो सब बातें हमारे लिए खत्म हो चुकी हैं, दुनिया दुनिया की बातें, अब तो यही बात रह गई है, एक ही तात एक ही बात हो, कौन सी? हम बाबा के घर में आए फरिश्ता स्वरूप बन करके जाना, हम वहां ये पुरुषार्थ नहीं कर पाते, यहां से मैं अपनी अवस्था बना करके जाऊं, बस एकदम साइलेंस। पर साइलेंस में रहने का मतलब ये नहीं है कि मेरी खुशी गायब हो जाए। सच्ची साइलेंस तो वही है, अंदर में बहुत खुश है। कई बार टेंशन पाल लेते हैं ना और आपस में बात नहीं करते, वो चेहरा कैसा होता है? वो अलग होता है, लेकिन खुश, वो स्नेह से भरा हुआ चेहरा, उस सच्ची बाबा की याद की मस्ती, वो चेहरे पर खुशहाली दिखाई दे, तब कहेंगे आप बाबा के घर में आकर आपने रस को अपने अंदर भरा, नहीं तो क्या किया। इसलिए ये दो दिन, कल तो विशेष, आज भी सुबह ही कहा था साइलेंस में कहा था ना। अगर आप लोग सवेरे अपने महावाक्य सुने हो तो सवेरे खास कहा था सारा दिन मौन में रहना। कल भी हमारे आगे बाबा का दिन रहेगा एकदम शांत, अंदर शांत चित्त होंगे, तब तो जब हम हॉल में आएंगे तो वो अनुभूति को कर पाएंगे। अपने अंदर ही अस्त व्यस्त हुए पड़े तो हम उस प्यार और शक्ति को अनुभव में कैसे लेंगे? क्योंकि बात केवल देखने की नहीं है, खेल तो सारा अनुभव का है, और जितनी मेरी अवस्था होगी उतनी मैं बाबा को अनुभव कर पाऊंगी या शक्ति भर पाऊंगी। तीसरी बात, फिर उस भक्त ने दोहराया, या कहूं उस प्रजाजन ने दोहराया, कुछ और कहना चाहेंगे राजन अब? तो उस राजन ने कहा कि अब मैं और क्या बताऊं, शायद मैंने तो सब कुछ बता दिया, बाकी तो मुझे भी कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ अभी तो तुम नहीं बन पाए हो, लेकिन अगर उसका साथ अपने साथ अभी कर लो तो शायद अगला जन्म, पर कोई तो तुम्हारे भी पुण्य कर्म रहे हैं जो तुम मेरे नजदीक आए हो, प्रजा में इतने लोग हैं वो तो मेरे करीब नहीं आए, हालांकि पालना मैं सबकी करता हूँ, सबके लिए प्यार है, क्योंकि राजा के लिए तो प्रजा संतान है, तो मैं सबकी पालना करता हूँ, ध्यान सबका रखता हूँ, फिर भी तुम करीब आयो, कुछ तो तुम्हारा भी नसीब है, तो अपने नसीब को देखो और भगवान का शुक्र करो कि भगवान ने इस जन्म में तो अच्छा नसीब दिया, अगले जन्म में मैं आपको अभी से साथी बनाऊंगा तो और मेरा अच्छा नसीब होगा, शुक्र का। यही बात हमारे साथ भी है, सचमुच बाबा का हम शुक्रिया कितना करते हैं। वहां बाबा वहां, आजकल तो जितने महावाक्य लास्ट के चले हैं बाबा के, बाबा ने बच्चों को भरपूर प्यार किया है और हर पल यही कहा है, कौन सी बात? वाहा मेरे बच्चे वाह, बच्चों के अंदर से निकलता वाहा बाबा वाह, और बाबा से बाबा कौन सा गीत गाता? वाहा बच्चे वाह। तो हमारे अंदर से सचमुच ये गीत निकलता है जो बाबा कहते हैं, वाह मेरा बाबा वाह, जो आपने मुझे अपना बना लिया। दुनिया में बहुत है कितनी भक्ति करते हैं तो भी भगवान को अभी तक नहीं पाया है, और बाबा ने आपको अपना बना लिया, चुन लिया, फिर अपनी भूमि पर ले आया, इतना बड़ा सौभाग्य दिया, इस वर्ष आपको बाबा मिलन में ये आने का चांस मिला, शुक्रिया बाबा। शुक्र तो करो, दिल से शुक्र करो कि बाबा तेरा लाखों शुक्रिया जो तूने मुझे अपना बना लिया, जो मुझे इतनी प्यार की दृष्टि दी, मैं आज आपके घर में आ पाया। आपको भी अनुभव होगा, बहुत से ऐसे भाई बहने हैं जिनको आने का मौका परमिशन भी मिली, पर उनके परिवारों में कोई ना कोई बात आ गई, कारणे अकारणे उनको रुकना पड़ा। ऐसे भी बहुत होंगे ना, जो आपकी जानकारी में होंगे, उनकी टिकट बन गई, फिर कुछ घर में ऐसी बात हो गई, रुक गए और आप पहुंच गए, तो कितना ना शुक्रिया करें कि हम बाबा के घर में पहुंच गए और आज मैं इस वरदान भूमि में बैठकर अपनी झोली भर रहा हूं। तो फिर तो मेरी झोली खाली नहीं रहनी चाहिए। जितना अंदर में मेरे अंदर बाबा के लिए प्यार होगा, उतना अंदर से शुक्रिया निकलेगा। प्यार नहीं, या कहूं कहीं न कहीं मन बुद्धि अटकी हुई होगी, तो कोई न कोई बात हमें खींचती रहेगी। ये हो गया, वो हो गया, ये सुविधा नहीं, वो दुविधा है, कोई न कोई कारण अकारण खींचता रहेगा। लेकिन अगर अंदर में प्यार होगा तो कोई दुविधा कोई बात खींचेगी नहीं। चाहे स्थान कहीं भी मिलाओ, कमरा कहीं भी मिलाओ, चाहे सीट हॉल में कहीं भी मिले, लेकिन प्यार वो शक्ति है जो बिल्कुल करीबी का अनुभव करा देती है। ऐसा ऐसा मीरा को तो हर पल कितना परिवार ने दूर करने की कोशिश की, लेकिन उसने तो क्या कहा, मेरा तो वही एक गिरधर, वही मेरे साथ रहता है, वो है ही साथ। तो हमारे अंदर भी जब ये प्यार की शक्ति जागृत हो जाती है, तो कोई भी समस्या समस्या नहीं रहती। समस्या तभी बनती है जब हमारे अंदर और बातें आती हैं, जब हम औरों को देखें, कभी हम दूसरों को देखते हैं, इसको ये मिला मुझे नहीं मिला, कभी हम औरों का चिंतन करते हैं, ये ऐसा ये ऐसा। तो ये चिंतन, ये जब दृष्टि दूसरों की तरफ जाती है ना, तो हमारे अंदर दुविधा पैदा होती है। यूं भी कहा जाता है, राजस्थान में कहावत है, दूसरों की थाली में तो घी ज्यादा ही नजर आता है ना। जब हम दूसरों की तरफ देखेंगे तो क्या होगा, तो हमें हमेशा शिकायत रहेगी। लेकिन अगर उसकी बजाय हम अपने को देखेंगे, हमें भगवान ने चुना, बाबा ने मुझे चुना और इस तपोभूमि में बाबा ले आया, मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली। इस बार भी एक माता मिली थी, शायद ये कल या परसों की बात है, और वो बोली, बहन जी मैं सबसे ज्यादा भाग्यशाली हूं। मैंने हंसकर पूछा, क्यों भाई, क्या मिला? तो बोली, बहन जी मैं इस बार आ तो पाई, मेरा शरीर इतना साथ नहीं दे रहा, फिर भी मैं हिम्मत करके बाबा के घर पे आ पाई, मैं बहुत खुश हूं। अगला साल तो किसने देखा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगले साल क्या समस्या, क्या दुविधा होगी, क्या होगी, चाहे शरीर की बात तो छोड़ो, हो सकता है आप बोलेंगे हम तो युवा हैं, पर कल क्या होगा कुछ पता है? आज मैं बाबा के घर में हूँ, आज तो मैं इसका आनंद ले लूं, आज तो अपनी झोली भर लूं। इसलिए कोई भी पल ऐसा ना जाओ, ऐसा ना जाए जो मेरी कमाई ना हो। बाबा तो हमेशा कहते संगम युग का एक एक पल कैसा है, पद्मा पदम कमाई कराने वाला है, पद्मों से झोली भरने वाला है। एक एक पल अथाह देने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ याद रखना, अगर एक पल अथाह देने वाला है तो एक पल गंवाया तो वो जाने वाला भी तो है। एक पल एक वर्ष के बराबर, और एक पल गंवाया तो वो एक वर्ष भी तो जाएगा या नहीं जाएगा। इसलिए ये समय मुझे मिला है, ये किसी कीमत पर ना जाए। फिर याद आएगा, यहां से जाने के बाद याद आएगा, मधुबन गए थे, मैंने क्या पाया। इसलिए पहले, आजकल तो हमारे बहुत से भाई बहने हो गए हैं तो इतनी दादियों से वो बातचीत नहीं हो पाती। पहले मधुबन में जब आते थे तो पार्टियां जब दादियों से मिलती थी, बड़ी दादी हमारी दादी प्रकाशमणि हमेशा एक बात पूछा करती थी, शुरू शुरू की बातें सुना रही हूँ आपको, कि भाई आप आए हैं मधुबन में, क्या छोड़कर जाएंगे और क्या लेकर के जाएंगे, ये दो बातें अपने आप से पूछो। मुझे यहाँ इस भूमि पर क्या छोड़कर जाना है और यहाँ से मुझे क्या लेकर के जाना है। जो छोड़कर जाना है यानी जो भी मेरी कोई कमजोरी है, जो मेरे पुरुषार्थ में विघ्न बनता है, जो मैं वहां मेहनत करके भी नहीं छोड़ पा रहा हूं, यहां मैं संकल्प करके जाऊं, क्योंकि ये वरदान भूमि है। जैसे ही संकल्प करेंगे बाबा की शक्ति मिल जाएगी। तो दादी जी हमेशा कहा करती थी, ये पक्का करो कुछ न कुछ मुझे छोड़ करके जाना। अभी है तो सही ना, बहुत सी बातें हैं हमारे अंदर जो हम छोड़ना चाहते हैं पर हैं, अभी तक छूटा नहीं है, और ना छूटने के कारण वो कहीं ना कहीं हमारा संस्कार कहो हमारे ही आगे विघ्न बन जाता है। इसलिए अभी दो दिन अपने भीतर में भी देखना है कि मुझे कल बाबा के दिन पर क्या ऐसा है जो मैं समर्पित कर दूं। समर्पित कर दिया मना कर दिया, कई बार बाबा कहते हैं उसको संकल्प से भी नहीं लेना है। तो फिर समर्पित जो कर दिया, रोज अपने अंदर सवेरे सवेरे बाबा के आगे बैठकर वो गुण गाओ, वाह बाबा बाबा आपने तो मुझे शक्ति से भरपूर कर दिया, कमजोरी का दान कर दिया और उसकी एवज में दूसरा गुण, जैसे समझो क्रोध मैंने छोड़ा तो उसकी एवज में गुण कौन सा है, शांति। तो अभ्यास करो रोज दो दिन में एकदम शांत शांत, तो आपके अंदर का वो पुराना संस्कार छूट जाएगा। गुण को पानी दो, जिस चीज को पानी देंगे वही फलेगा ना। अवगुण को याद करेंगे तो क्या चीज सामने आएगी, बार बार वही आएगा। तो अवगुण को याद नहीं करना, लेकिन मैं यहां से क्या लेकर के जा रहा हूं, तो मुझे क्या लेकर के जाना है, कौन सी विशेषता को अपने में भर करके जाना है, उस विशेषता का आह्वान कि मैं बाबा से ये चीज अपने अंदर भर करके जा रहा। तो आज ही अभी जब हमारे सामने, जब आप दादियों के सामने, अपने बड़ों के सामने सौगात लेने आएंगे, स्थूल सौगात तो आपको मिलेगी। मधुबन की ये विशेषता कि देखिए आते ही आपको सौगात भी मिल जाती है। ये मधुबन की विशेषता है। जैसे लौकिक में आप अपने घर जाते हैं ना, माँ बाप ध्यान रखते हैं बच्चे को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या देना है, तो यहाँ आपको बाबा के घर में अच्छा अच्छा ब्रह्मा भोजन और आते ही सौगात, बाबा के घर से सौगात। तो स्थूल सौगात तो आप लेंगे, साथ साथ मन ही मन संकल्प करके आगे आना, धक्का मुक्की करके नहीं आना। धक्का मुक्की करना तो किसका काम है? ब्राह्मणों का काम है क्या धक्का मुक्की? नहीं, ब्राह्मणों की चाल तो फरिश्ते वाली चाल है, एकदम शांति से आना, लाइन में व्यवस्थित आना और अंदर ही अंदर चिंतन में लेकर के आना। ये स्थूल सौगात के साथ में अपने अंदर ये विशेषता वरदान में लेके अपने बड़ों से जाऊंगा, तो आप अनुभव भी करके जाएंगे और झोली भी भरपूर होगी। अन्यथा धक्का मुक्की में जैसे कोई चीज खींचनी होती है ना, ऐसे ही बुरा मत माना, माताएं बहनें भाई आते हैं, यूं लेते हैं, इधर से यूं लिया और चल मेरे भाई, अरे क्या मिला। वैल्यू कोई स्थूल चीज की नहीं है, वैल्यू तो प्रेम की है। वैल्यू तो आपने जो प्यार से दृष्टि ली है उसकी है। तो दृष्टि लेते जाना, शांति में आगे बढ़ते जाना, वो प्रेम को स्वीकार करना जो सौगात मिलेगी। पर ऐसे नहीं है ताली तो बजाओ और आके स्टेज पे वही काम करो। कई बार कहा जाता है, ये बात कहते हैं ना कि जो कहा वो तो ठीक है लेकिन परनाला वहीं का वहीं रहेगा। ऐसे मत करना, आप बहुत शांति से आएंगे। आपको बहनें कहती हैं क्रम से आओ, धीरे धीरे उठो, बहनें बहनों की तरफ, भाई भाई की तरफ लाइन में आओ, एकदम शांत भाव से आओ। अंदर में बाबा बाबा का सिमरन करते हुए चिंतन में बाबा को साथी बना करके लाओ। और यहाँ दृष्टि लेते हुए ऐसे नहीं पर खड़े हो जाए, फिर बहनें आपको कहेंगे आगे चलो आगे चलो, ना उनको कहना पड़े ना आपको कुछ अंदर में और सोच इधर उधर की जल्दी जल्दी करनी पड़े, ना धक्का लगाओ, बहुत शांति से आगे बढ़ते जाओ, प्रेम से दृष्टि लेते जाओ, उस प्रेम को स्वीकार करते जाओ, अपने अंदर बाबा का वरदान भर के जाओ। तब आपको लगेगा हमारी झोली हमने भरी है। ठीक है ये बात? ठीक है, तो क्या करेंगे, स्थूल केवल सौगात लेंगे या झोली भरेंगे या केवल शॉल देखेंगे? नहीं ना, नहीं ना, बिल्कुल लाइन से आओ। पर एक बात और भी कहना चाहती हूँ, ऐसे नहीं कि भगवान का भंडारा खुला है तो मैंने ले लिया, दीदी ने कहा था प्रेम को झोली में भरना तो दोबारा लाइन में लग जाओ, ऐसे मत करना। ये भी हमारे ऊपर बोझा है, तो इतने भी भोले नहीं बनो कि नहीं नहीं दीदी ने कहा था ना, तो जितना झोली भरे प्यार से वो अच्छा है, कहीं दोबारा लाइन में लग जाओ। नहीं, हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हम व्यवस्था को ठीक बना करके रखें। अभी व्यवस्था बनाएंगे तो सत्युग में वो व्यवस्था मिलेगी ना, बाबा ने कहा हुआ है जो अभी करेंगे कर। नई सृष्टि की स्थापना अभी हो रही है, तो आप वो सुखदायी सृष्टि चाहते हो जहाँ सदा सुख होगा, तो यहाँ पर भी सुख का कार्य पहले करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो सुख लेना है और बोलो सुख देना है। आप सच्चे ब्राह्मणों, सच्चे ब्राह्मणों का काम ये व्यवस्था बनाकर रखना। ठीक है, ठीक है। तो व्यवस्था कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, हाथ ही नहीं खड़ा किया। अच्छा ये बताओ व्यवस्था तोड़ेगा कौन कौन, हाथ खड़ा करो, खड़ा करो हाथ, जो व्यवस्था तोड़ने में सहयोग देंगे वो हाथ खड़ा करो। व्यवस्थित रहेंगे ना, तो इसलिए अब ये कोई भी शिकायत आपकी नहीं है। बाद में सब एक ही बात कहें, कौन सी बात, ये जो आज ग्रुप था ना सौगात लेने वाला, वो बिल्कुल शांति से आया, लाइन में आया, शांति से बाहर गया, न कोई आवाज थी, न कोई समस्या थी, न हलचल थी, न धक्का मुक्की थी। और जो ऐसा करेंगे वो हाथ उठाओ, न धक्का मुक्की करेंगे, न आवाज करेंगे, न हलचल करेंगे। बाकी जो हाथ नहीं उठा रहे उनका क्या प्रोग्राम है, इसलिए अपने लिए ही ताली बजाओ। और अब हम बाबा की याद में बैठेंगे, लेकिन जैसा कहा मधुबन भूमि, तपो भूमि, वरदान की भूमि, आज से अभी से अपने मन मुख को शांत मौन में ले जाओ, ताकि झोली पूरे जब तक अगली बार ना हो तब तक के लिए भरपूर कर लेना। ठीक है, ठीक है। तो सब बैठो बाबा की याद। देखो हमारे बीच हमारी आदरणीय सविता बहन भी आ चुकी हैं। सविता बहन यू तो डॉक्टर हैं, प्रोफेशन से हैं, डॉक्टर भी हैं, तन और मन दोनों की दवा देती हैं, और साथ साथ यहाँ जो आप सब बाबा के बच्चे आते हो उनको पूरी उनका ख्याल, वो भी तो ख्याल रखने वाला चाहिए ना, आपको पूछने वाला भी तो चाहिए कि हमारे को, आप भी सोचते हो ना हमको दादियां दीदियां मिली। तो देखो आज हमारे बीच सविता बहन आए हैं, आपसे मिलेंगे, आपसे बहुत सी बातें पूछेंगे, आपको वो स्नेह देंगे। तो चलो पहले करें बाबा को याद, करें, बैठो बाबा की याद।